ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 10 मार्च 2024 के लिए है। विषय आदमी, स्वर्णपथ, योहन्ना। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। उत्तरदायी अध्ययन, प्रेरितों के काम। तब पौलुस ने अरियुपगस के बीच में खड़े होकर कहा, हे इतने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वास्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वास्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वास्तु का प्रायोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचि उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा था कि हम तो उसी के वंश भी हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करें। मत्ती। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के नियन जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने संतमंत पाया है, संतमंत दो। मत्ती। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यूहन्ना। इन बातों के बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलम को गया। यरूशलम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतेसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई उतरता था वो ठीक हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काठ उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी काठ उठाकर चलने फिरने लगा। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो ठीक हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे ठीक किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सब्बत के दिन किया करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यूहन्ना। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पथराव करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो तुम मेरी प्रतीति ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मत्ती। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा। यूहन्ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फैलती उसे वो काट डालता, और जो फैलती है उसको वो छांटता है ताकि और फैले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फैलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जैसे पानी की एक बूंद सागर के साथ है, सूर्य के साथ प्रकाश की एक किरण है, वैसे ही भगवान और मनुष्य, पिता और पुत्र अस्तित्व में एक हैं। शास्त्र कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। सवाल, आदमी क्या है? आदमी विचार प्रेम की छवि है, वो काया नहीं है, वो ईश्वर का याजक विचार है जिसमें सभी सही विचार शामिल हैं। वो भगवान की छवि और समानता को दर्शाता है कि सभी के लिए सामान्य शब्द विज्ञान में पाई जाने वाली साचित पहचान जिसमें मनुष्य ईश्वर या मन का प्रतिबिंब है और इसलिए शाश्वत है, जो परमात्मा से अलग नहीं है, जिसे देवता से एक भी गुण नहीं मिला है, जो अपने आप में कोई जीवन बुद्धिमता और ना ही रचनात्मक शक्ति रखता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से वो सब कुछ दर्शाता है जो उसके निर्माता का है। प्राश्चित परमेश्वर के सामने मनुष्य की एकता का उदाहरण है, जिससे मनुष्य ईश्वर सत्य और प्रेम को दर्शाता है। मसीह आत्मा था जिसे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसकी दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुपरंति कराती थी। ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम ने पाप बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक संदेश भेजा, एक प्रश्न से परे, जो ये साबित करने के लिए था कि मसीह आ गया था। जो कुछ तुम देखते हो और सुनते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, यूहन्ना को बता दो कि दिव्य शक्ति का प्रदर्शन क्या है और वो तुरंत महसूस करेगा कि ईश्वर मसीही कामों में एक शक्ति है। हो सकता है कि आज के मसीही उस करियर के अधिक व्यावहारिक महत्व को अपनाएं, ये संभव है। हाँ, ये प्रतीक बच्चे पुरुष और महिला का कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि उन्हें कुछ हद तक स्वस्थ और पवित्रता के सत्य और जीवन के प्रदर्शन द्वारा मालिक के उदाहरण का पालन करना चाहिए। यीशु ने कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। उस पर कौन विश्वास करता है? वो अपने शिष्यों को संबोधित कर रहा था, फिर भी उसने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए ये चिन्ह होंगे, बल्कि उनके लिए, आने वाले समय में वो जो विश्वास करते हैं। यहाँ हाथ शब्द का प्रयोग रूपक के रूप में किया गया है, जैसा कि पाठ में है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। ये आध्यात्मिक शक्ति को व्यक्त करता है, अन्यथा आध्यात्मिक रूप से उपचार नहीं किया जा सकता था। एक अन्य समय में यीशु ने प्रार्थना की केवल 12 चेलों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उनके वचन के माध्यम से विश्वास किया था। आए हम खुद को इस विश्वास से मुक्त करें कि मनुष्य ईश्वर से अलग है और केवल ईश्वरी सिद्धांत जीवन और प्रेम का पालन करता है। यहाँ सभी सच्चे आध्यात्मिक विकास के लिए प्रस्थान का महान बिंदु है। स्वयं के लिए प्रवेश ये है कि मनुष्य ईश्वर की अपनी समानता है, जो मनुष्य को अनंत विचार के लिए स्वतंत्र करता है। ये विश्वास मृत्यु पर दरवाजा बंद कर देता है और इसे अमरता की ओर विस्तृत करता है। आत्मा की समझ और मान्यता अंत में आनी चाहिए और हम दिव्य सिद्धांत की आशंका के माध्यम से होने के रहस्यों को सुलझाने में हमारे समय में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में हम जानते हैं कि मनुष्य क्या नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये जानते हैं जब मनुष्य भगवान को दर्शाता है। नश्वर के माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति खिड़की के कांच के माध्यम से गुजरते हुए प्रकाश है। प्रकाश और कांच कभी नहीं पिघलते हैं, लेकिन सामग्री के रूप में कांच दीवारों की तुलना में कम अपारदर्शी है। नश्वर मन जिसके माध्यम से सत्य सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, वो है जिसने सत्य के लिए एक बेहतर पारदर्शिता बनाने के लिए बहुत अधिक भावतिकता, बहुत त्रुटि खो दी है। फिर जैसे बादल पतले वाष्प में पिघलता है, ये अब सूरज को छुपाता नहीं है। भावतिक शरीर और मन लौकिक हैं, लेकिन वास्तविक मनुष्य आध्यात्मिक और शाश्वत है। असली आदमी की पहचान नहीं खोई है, लेकिन इस स्पष्टीकरण के माध्यम से पाया जाता है। इसके लिए अस्तित्व और सभी पहचान के प्रति सचेत अविभाजित है और अपरिवर्तित रहता है। जब भगवान सब और अनंत काल का है, तब ये असंभव है कि मनुष्य को वास्तविक रूप से खोना चाहिए। ये धारणा के मन पदार्थ में है और तथाकथित सुख और पीड़ा, जन्म पाप बीमारी और पदार्थ की मृत्यु वास्तविक हैं। एक नश्वर विश्वास है और ये विश्वास वो सब है जो कभी नहीं खोएगा। मनुष्य की अपनी परिभाषा को जारी रखते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि सामान जैसे पूर्ण और अमर आदमी हमेशा के लिए अस्तित्व में है और किसी भी जीवन पदार्थ और बुद्धि के नश्वर भ्रम से परे और हमेशा मौजूद है। ये कठिन तथ्य पर आधारित है, काल्पनिक नहीं। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक के पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है। और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, ना कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। मनुष्य ईश्वर, आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सद्भाव और असीम आनंद है। और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। यूर के द्वीप असामूह की तरह मनुष्य स्वतंत्र है, पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु के साथ वर्तमान होना केवल भावनात्मक प्रमाणित या विश्वास नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रदर्शन और जीवन की समझ है, जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में सामने आया है। प्रभु के साथ होना ईश्वर के कानून का पालन करना है, परम आत्मा द्वारा पूर्ण रूप से शासित होना, आत्मा द्वारा ना कि पदार्थ द्वारा। हम सबको ये सीखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ? यदि ऐसा है तो रास्ता उज्ज्वल हो जाएगा पूरे दिन तक। आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। शाश्वत रूप से इस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, जो आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदानी होगा।